आदरणीय रामलोचन भाई जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई जी की मुख्य विशेषता है मेडिटेशन पर विशेष ध्यान देते हैं, और साथ साथ जैसे बाबा हम बच्चों को कहता है कथनी और करनी हमारी समान होनी चाहिए, इस पर भाई जी विशेष ध्यान देते हैं। और साथ में जो शांतिवन की VIP किचन है आपकी ही देखरेख में चलती है, तो आज अभी आप भाई जी से सुनेंगे और हम दोबारा से फिर उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय भाई जी।
ओम शांति। हम सभी शांति के सागर परमात्मा शिव की संतान शांत स्वरूप आत्माएं हैं। हमारा सबका स्वधर्म स्वकर्म स्वलक्ष्य शांति है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ब्राह्मण शांत स्वरूप की स्थिति में रह नहीं पाते, वाचा में आते हैं तो वाचा में आते हुए शांत स्वरूप की स्थिति में रहकर वाचा में आए वो नहीं हो पाता है। इसका कारण है कि द्वापर युग से जो देह भान का संस्कार पक्का रहा, तो देह भान में वाचा है, देह भान में बुराइयां हैं, देह भान से मुक्त हो जाओ तो वाणी से परे हो जाओगे। तो देह भान में रहने के कारण संस्कार पक्का हो जाने के कारण शांति में स्थित रहना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अभी तक अगर ब्राह्मण शांत स्वरूप स्थिति की महिमा को नहीं समझा है, महानता को नहीं समझा है, उस स्वरूप में टिकने का अभ्यास कम कर रहे हैं, तो ये समझ लें उनका पार्ट ऊंचा नहीं है, पद ऊंचा नहीं है। क्यों? सारी प्राप्तियां शांत स्वरूप स्थिति से। जब तक आप अपने स्वधर्म में नहीं टिकोगे, तब तक ना भगवान के पास सूक्ष्म वतन ना मूल वतन में जा पाओगे, क्योंकि सूक्ष्म वतन भी वाणी से परे का है, मूल वतन भी वाणी से परे का है। तो जब तक वाणी से परे की स्थिति नहीं बनती है, तब तक ना वतन जा सकते हैं, ना वतन निवासी बाप दादा से मिल सकते हैं, ना बात कर सकते, हां ब्यूटिलाइज कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं मिल सकते। यूटिलाइज करने से, मन में चित्र बनाने से भावना का भाड़ा मिल जाएगा, टेम्परेरी थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल में आत्मा भगवान से मिले और भगवान से प्राप्ति हो नहीं पाएगी। अगर थोड़ी देर भी भगवान से आत्मा सन्मुख मिल ले तो जैसे बहुत तेज आग होती है तो कोई चीज डालो तो तुरंत जल जाती है, ऐसे परमात्मा इतनी तेज आग है शीतल लेकिन तेज आग है। अगर थोड़ी देर भी आत्मा परम आत्मा के सन्मुख बैठ गई तो उसके न जाने कितने पाप भस्म हो जाएंगे, और भगवान के संग का रंग आत्मा बहुत बलवान बन जाएगी। लेकिन शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव न होने का दो कारण है। एक, शांत स्वरूप स्थिति की महानता का पता नहीं है, प्राप्ति का पता नहीं है, और इस स्वरूप में स्थित होने के लिए कौन डायरेक्शन दे रहा है उसका यथार्थ अनुभव नहीं है। भल बाबा कहते हैं लेकिन बाबा जैसे लौकिक में बाबा होते हैं ऐसे भगवान को बाबा ही कह देते। भगवान बाबा है, जिस भगवान की महिमा जब आप भगत थे तब सोचो यथार्थ भगवान को जानते भी नहीं थे तब भी भगवान की महिमा समझते थे कि कोई भी बात अगर भगवान के नाम व्रत रख लिया तो भले प्राण ऊपर नीचे हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते थे। और यहां हर सेकंड थोड़ा अलबेलापन हुआ श्रीमत की अवज्ञा होती रहती, नहीं तो सोकर उठने से लेकर सोने तक एक एक कदम की श्रीमत मिली हुई है। हम कितना उस श्रीमत पर चलते, क्या श्रीमत प्रमाण उठते हैं, श्रीमत प्रमाण योग करते हैं, श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं, श्रीमत प्रमाण तन मन धन सेवा में लगाते हैं? नहीं, थोड़ा भगवान की मत बाकी अपनी मत। क्यों? क्योंकि भगवान को पहचाना नहीं है अभी। जो बाबा कहता मुझे कोटि में को पहचान पाते हैं वो अभी कोटि में को बने नहीं है। जो भगवान को पहचान ले, जिस पल ये अनुभव हो जाएगा कि भगवान कौन है, उस पल से आपको भगवान के श्रीमत की पालना की शक्ति और श्रीमत पर चलने के लिए आंतरिक दृढ़ संकल्प और भगवान के प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड आ जाएगा। अगर नहीं है तो अभी भगवान को पहचाना नहीं है कि भगवान कौन है। बाबा बाबा कहते हैं भगवान के गुणों की महिमा करते हैं, जब भगवान आपका बाप शांति का सागर है तो आप भी तो भगवान की प्रॉपर्टी के अधिकारी हुए ना, आप क्यों नहीं शांति के सागर बने। यही कारण कि अभी भगवान को शांति के सागर के रूप में मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूं इस रूप में मिले नहीं हो। यूटिलाइज किया होगा जरूर लेकिन प्रैक्टिकल नहीं मिल पाते। मिल जाए तो प्रूफ है, जो आपको बताया तीन बातें ये मिलने का प्रूफ है। श्रीमत पर चलने की शक्ति, रिस्पेक्ट रिगार्ड, और तीसरा उसको करने के लिए आंतरिक दृढ़ संकल्प आ जाएगा। तो एक बात की कौन श्रीमत दे रहा है उसका पता नहीं है, अनुभव नहीं है, निश्चय नहीं है। और दूसरी बात शांति की महानता का अनुभव नहीं कि शांति की स्थिति क्या कर सकती है। एक शब्द में आप समझ सकते हैं कि शांति की स्थिति कितनी महान है। देखो जब कोई भी बात होती है, चाहे किसी को ज्ञान सुनाओ चाहे किसी को कोई बातें बताओ, जब वो नहीं समझता है तो क्या कहते हो, ये बाणी से मानने वाला नहीं है, अब मनसा योगदान दो, कहते हैं ना। तो जो चीज बाणी से नहीं काम कर हो सकता है, जो बात और साधन से नहीं हो सकता है, वो काम साइलेंस की शक्ति से हो सकता है। लेकिन बाणी का प्रयोग करते करते प्रैक्टिस पड़ी हुई है इसलिए ये सहज लगता है। लेकिन बाणी से परे अपने स्वधर्म में स्थित नहीं हो पाते। कई बार बाबा की मुरली में सुनते हैं, बच्चे स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अपने स्वघर को स्वधर्म में टिको। जब से ब्राह्मण बने हो तब से और आज तक देखो, न जाने कितनी बार मैं समझता हूं, जो पुराने होंगे लाखों बार तो मुंह से या मन से निकल चुका होगा ओम शांति ओम शांति। चलते फिरते भी शब्द है ओम शांति, अपना मिलना ही ओम शांति से। जब योग में बैठते हैं तो पहला संकल्प यही करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो इतना शांति को रटते हुए स्थिति नहीं रटा है। कई देखो ओम शांति करते इतना जोर से बोलते इसे डांट रहे, लेकिन ओम शांति स्वरूप में नहीं टिक पाते। इसका कारण है कि शांति की चार स्टेजेस हैं। जब तक उन चारों स्टेजेस का अनुभव नहीं किया है, तब तक शांत स्वरूप स्थिति में टिक नहीं पाएंगे। वो चार स्टेज है। पहला है साइलेंस, दूसरा है स्वीट साइलेंस, तीसरा है डीप साइलेंस और चौथा है डेड साइलेंस। साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस और डेड साइलेंस, ये जब तक चारों प्रकार की शांति का अनुभव नहीं किया है, तब तक शांत स्वरूप की स्थिति नहीं बन पाएगी। रटने वाले बन जाएंगे, टिकने वाले नहीं, स्वरूप नहीं, लेकिन प्राप्ति स्वरूप से। चारों का आधार है। पहली बात है साइलेंस। साइलेंस का आधार है वैराग्य वृत्ति। स्वीट साइलेंस का आधार है त्याग वृत्ति। डीप साइलेंस का आधार है अंतर्मुखी और डेड साइलेंस का आधार है उपराम वृत्ति। उपराम वृत्ति, पहली बात है साइलेंस की स्थिति। आपका मन शांत तब होगा जब आप योग में बैठते हैं या कर्म क्षेत्र पर हैं, लेकिन आपका मन शांत स्वरूप स्थिति में तब रहेगा जब आप बैठे हुए या कर्म करते समय आपके मन में बाबा की याद, सो स्वरूप की याद या बाबा के रचता और नॉलेज की याद या सेवा की याद, ये चार याद में रहेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। अगर इन चारों से अदर कोई संकल्प है तो मन शांत हो नहीं सकता। अब यह चारों में मन रहे, हर एक अनुभवी है कि जैसे याद में बैठते हैं मन भागने लगता है तुरंत, इधर उधर के संकल्पों में जाने लगता है। क्यों? जब आप बैठते हो या उसके पहले आपने अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को नहीं लाया था। जब वैराग्य वृत्ति हो कि सब खत्म हो जाने वाला है, मेरे साथ कुछ नहीं चलेगा सिवाय बाबा, बाबा का ज्ञान, बाबा की याद, बाबा की सेवा, जब ये अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा रहे ये बात, तब आपका मन बाबा की तरफ लग सकता है, तब मन शांत हो सकता है। कई ऐसा कहते हैं, मेरा विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है, मनन चलता ही नहीं है, जैसे बैठते हैं मन भागने लगता है। कारण, वैराग्य वृत्ति नहीं, क्योंकि बिना वैराग्य से, किसी चीज से वैराग्य होता है तब उससे नफरत आती है, छोड़ने का मन कहता है, उसको त्याग करने के अभ्यास पर चलते। जब तक वैराग्य ही नहीं आया है, वैराग्य फाउंडेशन है, तो शांत स्थिति के लिए वैराग्य वृत्ति आवश्यक है। वैराग्य वृत्ति लाने के लिए एक तो ज्ञान का मनन करो। जब ज्ञान का मनन करोगे, ज्ञान आपके बुद्धि में बैठेगा, तब विवेक जागृत होगा, फिर वैराग्य आएगा। जब तक विवेक जागृत नहीं होता, तब तक वैराग्य नहीं आएगा। ब्राह्मण को देखो, दुनिया में तो शमशानी वैराग्य होता है, दुख आता है, बहुत दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, खाने पीने की कमी होती है, तो कहते हे भगवान हमको उठा लो, तब थोड़ा वैराग्य आ जाता है, या दूसरे को दुखी देखते। ब्राह्मणों में तो वो बातें है ही नहीं। ब्राह्मण बीमार पड़ते हैं, कहते हैं कर्म भोग चुक्तु हो रहा है, हमारा ऊंचा पद फिक्स है, खुश होते हैं बीमार होने पे। और ब्राह्मणों के लिए भगवान की गारंटी है, दुनिया भूखा मरे मरे, लेकिन बाप बच्चों को दाल रोटी अंत तक खिलाता रहेगा, तो ये निश्चय है, तो किस लिए दुखी हो। अच्छा, अगर कोई लौकिक रिश्तेदार बीमार पड़ते हैं, तो बाबा ने पक्का कराया हुआ है, अम्मा मरे हलवा खाओ, बेबी मरे हलवा खाओ, एक दिन तो सबको जाना ही है। तो इसलिए ब्राह्मणों को वैराग्य आता नहीं है, क्योंकि कोई दुख ही नहीं है जिसके कारण वैराग्य आए। भगवान मिला है, बुराइयां छूटती जा रही हैं, सुख शांति आती जा रही है, ये जीवन अच्छा लग रहा है, क्यों वैराग्य आएगा। लेकिन वैराग्य लाना है, कारण एक तो हमारे वैराग्य से दुनिया वालों को वैराग्य आएगा। ये जो दुनिया वाले भविष्यवाणी करते हैं, अब विनाश हो जाएगा, इस डेट को होगा, वो होगा, वो गलत नहीं करते हैं, वो अपनी गणित के हिसाब से एक्यूरेट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं इस डेट को विनाश होगा, लेकिन दुनिया में 95% चाहते नहीं विनाश हो, इसलिए होता ही नहीं, क्योंकि सबके संकल्प का वायुमंडल बन जाता है, हो नहीं पाता है। और दुनिया में दुख बहुत बढ़ रहा है। बाबा कहता, क्या अपने भाई बहनों के दुख को देखकर रहम नहीं आता है? तो उनको दुख से छुड़ाने के लिए जब ब्राह्मण वैराग्य लाएंगे तब वो वाइब्रेशंस फैलेगा, तब दूसरों को भी वैराग्य आएगा, निमित्त ब्राह्मण बनेंगे। तो वैराग्य लाने के लिए ज्ञान का मनन करो, ऊपर ऊपर से ज्ञान नहीं, मनन करो। जैसे जब मक्खन बिलोते हैं क्या दही, तब मक्खन निकलता है, बिना बिलोए मनन किए कुछ मक्खन नहीं निकलता है, तो उसको बिलोना पड़ता है। तो पहले मनन करो, उसकी गहराई में जाओ, फिर धीरे धीरे वो आपकी बुद्धि में बैठने लगेगा, ये बात सत्य है। वैसे भी देखो, कोई बात कोई ज्यादा सोचता है तो उसकी बुद्धि में बैठ जाता है, संस्कार बन जाता है, फिर वो कर्म करने लगता है। तो पहली बात है त्याग, वैराग्य। दूसरा है स्वीट साइलेंस, इसका आधार है त्याग। जब वैराग्य आएगा तब त्याग स्वतः हो जाएगा, वैराग्य से त्याग हो जाता है। जब तक वैराग्य नहीं तो त्याग नहीं। जब किसी चीज से वैराग्य आ गया, ये मेरे काम का नहीं है, इसे छोड़ना है, मन के अंदर बुद्धि के अंदर बैठ गया, तो उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करने लगते हैं, फिर त्याग हो जाता है। तो स्वीट साइलेंस अर्थात फरिश्ता रूप में मीठे बाप दादा से बातें करना, मीठी मीठी बातें सुनना, शक्ति लेना, शक्ति देना, सर्व संबंधों का सुख लेना, संबंधों का सुख प्राप्त करके संतुष्ट बनना, स्वीट साइलेंस है। इसमें बहुत मन की मिठास है। लेकिन फरिश्ता रूप बनोगे तब स्वीट साइलेंस की स्थिति बनेगी, तब स्वीट साइलेंस का अनुभव मीठे बाप दादा के द्वारा कर पाओगे। जब तक फरिश्ता नहीं बने हो तब तक अनुभव नहीं होगा। पहले भी बताया, ब्यूटिलाइज कर लोगे, भावना का भाड़ा मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल भगवान के साथ उस संबंध का अनुभव हो, भगवान की गोद में बच्चा बनकर बैठो, भगवान माँ बाप बनकर प्यार करे, दुलार करे, वो प्रैक्टिकल अनुभव फरिश्ता स्थिति से होगा। संबंध का सुख अगर आत्मा ले लेती है फिर वो तृप्त हो जाती है, फिर और कहीं संकल्प जाता नहीं। आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती है, और जो इच्छा मात्र मात्रम अविद्या बनी, वही दूसरे की इच्छा पूरी कर सकती। जो दूसरे की इच्छा पूरी करे वही देवी या देवता बनेगा। देवी देवता का अर्थ ही है देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला। जिसका यादगार इस लौकिक दुनिया में देखो, प्रकृति जो देती है उसको भी देवी या देवता कह दिया है। सूरज रोशनी देता, सूर्य देवता कहते। हवा चलती, वायु देवता कहते। देता है। अब देखो, देने वाले को देवता कहा गया, जो लेता है उसे देवता नहीं कहा गया। जैसे देखो ये लाइट है, ये भी रोशनी दे रही है, सूरज भी रोशनी देता है, लेकिन सूरज को देवता कहते हैं, बिजली देवी देवताएं नमा कोई नहीं कहेगा, सूर्य देवताएं नमा करेंगे, लेकिन बिजली देवी देवताएं नमा कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं बिजली को नमस्कार करते? कारण ये रोशनी दे रही है, फ्री में नहीं, बिल ले रही है। अगर बिल ना दें तो इतनी भी रोशनी नहीं देगी, ये ले रही है, इसलिए देवी या देवता नहीं। देवी या देवता अर्थात देने वाला। दे वही सकता है जो इच्छा मात्रम अविद्या स्वयं होगा, और इच्छा मात्रम अविद्या वही हो सकता है जो बाप दादा से सर्व संबंधों का सर्व सुख लेकर सर्व प्राप्तियां करके भरपूर हो जाए, कुछ पाने के लिए बाकी न रह जाए, वो इच्छा मात्रम बन सकता है। तो फरिश्ता स्थिति के लिए फरिश्ता में पांच शब्द हैं, उन पांच शब्दों का स्वरूप बनो तो फरिश्ता बन जाओगे। फरिश्ता में पांच शब्द, पहला है फा। फा अर्थात फालो फादर करने वाला, फा अर्थात फरमान पर चलने वाला। फालो फादर, कौन सा फादर? ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को फालो करने वाला और शिव बाप के फरमान पर चलने वाला। ब्रह्मा बाप के कदम पिछाड़ी कदम, जैसे ब्रह्मा बाप ने संकल्प बोल कर्म किया, ऐसे मुझ आत्मा का संकल्प बोल कर्म तन मन धन सब कुछ फालो ब्रह्मा बाप, क्योंकि ब्रह्मा बाप फरिश्ता बन चुका है, अपने सामने एग्जाम्पल है, अपने सामने सैंपल है, उसको फॉलो करना। तो फॉलो फादर और शिव बाप के फरमान पर चलने वाला, हर श्रीमत को फॉलो करने वाला, वो फरिश्ता बन सकता है। इसके किए बिना आप चाहो हम फरिश्ता की स्थिति प्राप्त कर लें, हो नहीं पाएगी। हाँ, टेम्परेरी आप योग में बैठकर बहुत मेहनत करके थोड़ी देर बन सकते हो, लेकिन स्थिति नहीं रह पाएगी। तो पहली बात है फा, दूसरी बात है रा। रा अर्थात रचता और रचना के ज्ञान को स्मृति में रखने वाला, रचता और रचना के ज्ञान को स्मृति में रखने वाला। रचता अर्थात शिव बाबा, रचना अर्थात जो बाबा ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान को स्मृति में रखने वाला। रचता और रचना का ज्ञानी। दूसरा, रॉयल्टी और रियल्टी में रहने वाला। रॉयल्टी और रियल्टी, रॉयल्टी जैसे देवी देवताएं कितने रॉयल हैं, चाल चलन बोल चाल कितनी रॉयल है, हम तो देवताओं से भी बड़े ब्राह्मण हैं। हमारा बोल चाल चलन कितना रॉयल होना चाहिए। साकार बाबा के समय अगर चलते समय किसी बच्चे का चप्पल या पैर घिस पिस थोड़ा आवाज कर दे तो बाबा कहता था ये ब्राह्मण नहीं है लेकिन कलयुगी मानव है, इतनी कड़ी टाइटल देता था। और मम्मा कहती थी कि जो जिसका चप्पल उप्पल थोड़ी फट 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 चलते हैं कहीं ना, तो मम्मा कहती थी जो रॉयल्टी से चल ही नहीं सकते हैं, जिसका चाल चलन ही घिसा पिटा है वो पद भी घिसा पिटा ही पाएंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो ब्राह्मण अर्थात रॉयल्टी में रहने वाला। आप सब, हम सबको अनुभव है कि जब बाबा की याद होती है तब हमारी चाल कैसी होती है, और जब बाबा की याद नहीं रहती है तब कैसे चलते। हर एक अनुभवी, जितनी देर बाबा की याद है आपकी चाल और चलन दोनों बड़ी रॉयल होगी, ऑटोमेटिक धीरे धीरे पैर उठेंगे। अगर तेज भी चलना है तो चलेंगे, लेकिन चप्पल फट फट नहीं करेगा, आवाज नहीं करेगा, ऑटोमेटिक मन की शांति, अंतर की शांति शरीर को शांत रखती है। अगर अंदर शांति नहीं है, अंदर हलचल है, तो ये बाहर से शांत हो ही नहीं सकते। तो रियल्टी और रॉयल्टी, रचता और रचना का ज्ञान। तीसरा है ई, रा पर छोटी मात्रा होता है ई। ई अर्थात ईश्वरीय लगन में मगन रहने वाला, और ईश्वर का पैगाम सबको सुनाने वाला। ईश्वरीय लगन में मगन रहने वाला और ईश्वरीय पैगाम सबको सुनाने वाला, फरिश्ता के लिए क्या कहते हैं, वो प्रकट हुआ, भगवान का परिचय दिया, गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। शरीर से कोई गायब नहीं होता है, लेकिन परिचय दिया और देह भान से गायब हो गया, अपने स्वरूप फरिश्ता स्वरूप में टिक गया। फरिश्ता स्वरूप में देह है, लेकिन लाइट की देह है, यह हड्डी मांस वाली देह नहीं है। लाइट प्रकाशमय काया, जैसे आपकी परछाई है ऐसे आप, तो प्रकाशमय काया के बीच में प्रकाश स्वरूप आत्मा स्थित है। इस भान में आकर मुख का आधार लेकर ईश्वरीय पैगाम दिया और फिर इस मुख के आधार से परे होकर अपने स्वरूप में टिक गए। इसको कहा जाता है अंतर ध्यान हो जाना, अंतर ध्यान। जो अंतर आत्मा है उस स्वरूप में स्थित, बाहर का ध्यान खत्म, अंतर का ध्यान, अंतर ध्यान हो जाना। चौथा है सा, सा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाला, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाला और सर्व को स्नेह सहयोग देने वाला। भारत के बाहर सब फरिश्ता को ही मानते, फरिश्ता की पूजा करते। क्यों? फरिश्ता मदद देता है, इसलिए फरिश्ता अर्थात सहयोग देने वाला। तो शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाला और सर्व को स्नेह सहयोग देने वाला। जब सारे दिन के अंदर ये जो बातें बता रहे हैं, जब ये प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर आपके जीवन में होगी, तब फरिश्ता स्थिति आएगी। ऐसे सारा दिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया और योग में आकर बैठो, मैं फरिश्ता हूँ फरिश्ता हूँ, नहीं बन सकोगे। कर्मों का बोझ आपको हल्का होने नहीं देगा। जिस कर्म में शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, जिस कर्म में बाबा की याद नहीं है, वो कर्म बंधन बन जाता है। और जिसमें बाबा की याद है, शुभ भावना, शुभ कामना है, कल्याण की कामना है, वो आपका कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। तो जब योग में बैठते हैं तो दोनों कर्म हमारे सामने आते, श्रेष्ठ कर्म भी और बंधन वाला भी। बंधन वाला नीचे खींचेगा, श्रेष्ठ कर्म उड़ाएगा। तो अगर कर्म क्षेत्र पर आप शुभ भावना, शुभ कामना वाला रहा, सहयोग देने वाला रहा, तो ये श्रेष्ठ कर्म आपको जब योग में बैठोगे तो वो मदद देता है। और पांचवी बात है ता, अर्थात मैं आत्मा भगवान के साथ साथ मास्टर तारनहार हूं। और त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ हूं। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ हूं। त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्करधारी और मास्टर तारनहार। जैसे भगवान पतित आत्माओं को पावन बनाता है, ऐसे मैं आत्मा भगवान के साथ साथ मास्टर पतित पावन हूँ। मास्टर पतित पावन बनकर आत्माओं के पापों को नष्ट करो, ये अभ्यास चाहिए। इसके बाद है डीप साइलेंस। डीप साइलेंस का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता, आप लौकिक में देखो, अगर किसी को सागर से रतन निकालना है तो डीप में जाना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है। और वैसे भी लोग जब डुबकी लगाते हैं, नहाने जाते हैं, तो देखो आंख भी बंद करते, नाक भी बंद करते, कान भी बंद करते, तब डुबकी लगाते। अब आपको अगर डीप साइलेंस का अनुभव करना है तो इन नाक कान आंख सबको बंद करना पड़ेगा, अर्थात बाहर की चीजें देखना, सुनना, बोलना सब बंद। लगाया है ना डुबकी, यूपी वाले तो सब लगाते ही हैं, बंद करते हैं ना आंख नाक कान सब। तो जब आप बाहर का देखना बंद करेंगे, सदा अपनी आत्मा को देखो, आत्मा के पिता को देखो, और जो पिता के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके बारे में गहराई से सोचो। जितना गहराई से सोचोगे वो चीज आपकी बनेगी, और वही आपकी चीज है, क्योंकि गहराई से सोचने से उसका स्वरूप बनेंगे। जैसे भोजन खाने से जब भोजन का महीन रूप खून बन जाता है तब भोजन आपका हुआ। अगर भोजन खून नहीं बना हजम हुए बिना तो भोजन नुकसान देता है। ऐसे बाबा का ज्ञान जब महीनता में जाकर गहराई में जाओ तब आप ज्ञान समझ में आए, तब वो ज्ञान आपका बन जाएगा। टाइम हो गया है, पांचवा है डेड साइलेंस। डेड साइलेंस अर्थात मैं आत्मा टोटल नंगी आई थी, मैं हूं ही आत्मा, शरीर से कोई मतलब ही नहीं, मैं हूं ही आत्मा। मैं आत्मा, मेरा बाप परम आत्मा, परम धाम में बैठो। जब आपकी वहां कुछ देर बैठने की प्रैक्टिस पड़ जाए तब आप साइलेंस में लंबा समय टिक सकते, तब आपको बाणी अच्छी नहीं लगेगी, किसी की आवाज अच्छी नहीं लगेगी। जब तक वो बाणी से परे परम धाम में नहीं स्थित हो पाते हैं, तब तक बाणी की तरफ संकल्प जाता है। ठीक है, ये चारों बातों का अभ्यास, साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस और डेड साइलेंस, फिर आप बाबा के समान मास्टर शांति का सागर बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति।